प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के लिए फिजी की ओर चला ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधिमंडल। सुर्खियों में चीन के प्रभाव का बोलबाला जारी। फेडरल सरकार महामारी की छुट्टी के भुगतान को समाप्त करने से पीछे नहीं हटेगा। और खेल में निक किरियोस नहीं मानते हैं कि उनका गुस्सा विंबलडन की हार का कारण है। अब खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री सीनेटर पेनी वोंग और पैसिफिक मंत्री पैट कॉनरॉय पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के लिए फिजी जा रहे हैं, जो 2 साल में पहली बार व्यक्तिगत बैठक है। श्री कॉनरॉय कहते हैं कि फेडरल सरकार के नए जलवायु लक्ष्य को अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों द्वारा अच्छी तरह से समर्थन मिला है और जलवायु परिवर्तन पर ऑस्ट्रेलिया के बदले हुए रुख का मंच पर स्वागत किया जाना तय है, लेकिन किरिबाती के पीछे हटने के सदमे से इस घटना पर पहले ही छाया पड़ चुकी है। ऐसी आशंका है कि किरिबाती की वापसी बीजिंग के साथ उनके घनिष्ठ संबंध को देखते हुए संभावित रूप से इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव की चर्चा से ध्यान भटका सकती है। हालांकि 16 दक्षिण पैसिफिक देशों के विदेश मंत्री पहले ही कथित तौर पर किरिबाती से पैसिफिक परिवार की ताकत पर जोर देने पर बात करने के लिए सहमत हो गए हैं। फेडरल स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर का कहना है कि महामारी की छुट्टी का भुगतान समाप्त होने के बावजूद लोगों को कोविड होने पर अलगाव नियमों का पालन करना जारी रखना चाहिए। कोविड की वजह से अलग थलग पड़े लोगों के लिए और जिनके पास सिक लीव्स नहीं थी, ऐसे लोगों के लिए जो $750 का भुगतान था वो समाप्त हो गया है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि इससे काम पर जाने वाले लोगों की तबीयत और खराब होकर वायरस और भी फैल सकता है। चैनल 9 से बात करते हुए श्री बटलर ने निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि सरकार भुगतान को यथावत रखने का जोखिम नहीं उठा सकती, भले ही मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही हो।
These are hard decisions, and I encourage people where there are isolation rules that are still in place at a state level to follow them, of course. But you know, we are rolling out very significant measures to improve our resilience as a community.
फेडरल सरकार ने सितंबर में होने वाले जॉब समिट के विवरण की घोषणा की है। अक्टूबर में सरकार के पहले बजट से पहले जॉब्स एंड स्किल्स ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन सितंबर की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी कहते हैं कि शिखर सम्मेलन उत्पादकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण कौशल की कमी को कम करने के तरीकों पर गौर करेगा, लेकिन महिलाओं और प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर और डिजिटल नवीकरणीय और विनिर्माण उद्योगों में भविष्य के काम को भी प्रमुखता से दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी के लाभ के लिए ऑस्ट्रेलिया में भविष्य में रोजगार की योजना बनाना है।
We intend to bring together business, unions, civil society groups, other levels of government to discuss how as we move forward we can maximize not just the benefit for the economy that comes with new industries, that comes with good jobs, how we make sure that Australians can fulfill those jobs of the future.
शिखर सम्मेलन के बाद ट्रेजरी विभाग द्वारा नीति को सूचित करने के लिए सरकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्हाइट पेपर जारी करने की उम्मीद है। आज से अधिक ऑस्ट्रेलियाई और ज्यादा COVID-19 उपचारों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। चौथे कोविड वैक्सीन के लिए पात्रता को 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है और एंटीवायरल दवाएं 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। फेडरल सरकार का कहना है कि सर्दियों में मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए ये नए उपाय पेश किए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर क्रिस मॉय कहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
It's an important move to widen the access of these medications and to somewhat simplify the eligibility criteria. So essentially, those over 70 now, with or without symptoms, who have COVID, can now get access to the medications. Those over 50 with two risk factors, or Aboriginal or Torres Strait Islanders 30 years and over with two risk factors.
वेस्टर्न सिडनी में आज सुबह एक यूनिट में आग लगने से एक 27 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। दमकल कर्मियों को सुबह 3 बजे कैंपबेल स्ट्रीट पैरामेटा में बुलाया गया। एक व्यक्ति को बचाने के बाद दमकल कर्मियों ने दूसरे व्यक्ति को अंदर से बेहोश पाया। उसे गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फेडरल सरकार का कहना है कि उन्होंने पिछले तीन दिनों में $340 मिलियन से अधिक मूल्य के बाढ़ आपदा भुगतान संसाधित किए हैं। सप्ताहांत में बेसाइड, मेटलैंड, डंगोग, सिंगलटन, लेक मक्वायरी और अपर लॉचलैंड इन न्यू साउथ वेल्स स्थानीय सरकार के क्षेत्रों में वयस्कों के लिए $1,000 और $400 प्रति बच्चा का भुगतान बढ़ा दिया गया है। सरकारी सेवा मंत्री बिल शॉर्टन ने समयबद्ध तरीके से दावों का आकलन करने और उन्हें प्रदान करने के लिए सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है।
Quite amazing to think from 2 PM Thursday, when the 26 LGAs have been declared the disaster zones, that the Albanese government's been able to put out support for 414,000 Aussies caught up in the floods.
न्यू साउथ वेल्स सरकार ने सिडनी हार्बर ब्रिज के ऊपर एक नया ध्वज स्थापित करने की महंगी योजना खारिज की है। इस वजह से अब सिडनी हार्बर ब्रिज पर एबोरिजिनल ध्वज स्थायी रूप से रहेगा। प्रीमियर डोमिनिक परोटे ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में इस बदलाव की पुष्टि की। अतिरिक्त फ्लैग पॉल स्थापना की $25 मिलियन की लागत का खुलासा श्री परोटे ने पिछले महीने किया था। इसके बजाय इस फंडिंग को क्लोज द गैप पहल के लिए पुनः आवंटित किया जाएगा। नई डॉक वीक को मनाने के लिए पिछले 7 दिनों से सिडनी हार्बर ब्रिज पर एबोरिजिनल ध्वज फहरा रहा था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या करने के कुछ ही दिनों बाद जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऊपरी सदन के चुनावों में आराम से जीत गई। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं और 2 साल पहले शीर्ष पद से हटने के बावजूद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में एक शक्तिशाली व्यक्ति बने रहे। मतदान से पता चलता है कि चुनाव परिणामों में उनकी हत्या एक प्रमुख कारक नहीं थी। कई लोग इसकी एक वजह कमजोर विपक्ष भी बता रहे हैं। एक 41 वर्षीय संदिग्ध को आगे की पूछताछ के लिए अभियोजकों के पास भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि उसने पूर्व पीएम की हत्या करना स्वीकार किया है, ये मानते हुए कि आबे एक धार्मिक समूह से जुड़े थे और उन्होंने संदिग्ध आरोपी की मां से पैसे लिए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के संभावित उत्तराधिकारी खुद को तेजी से भीड़भाड़ से अलग साबित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी को एक नए नेता के चुनाव के लिए एक दृढ़ समय सारणी निर्धारित करने की उम्मीद है। उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर चतुराईपूर्ण अभियान वीडियो जारी किए और रविवार की सुबह राजनीतिक टॉक शो में अपने विषय सार्वजनिक करने के लिए दिखाई दिए। साधारण कर्मियों को किए गए वादे, जिसमें कर कटौती जैसे विषय शामिल है, कंजर्वेटिव पार्टी के ऐसे सदस्यों से अपील की गई जिनके लिए टैक्स में कटौती बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व वित्त मंत्री साजिद जावेद कहते हैं कि टैक्स में कटौती उनकी आर्थिक योजना का आधार है।
I don't believe in unfunded tax cuts. This is a funded proposal, and I will set that out in some detail. But it's really important, to explain why this is so important. I am really worried that we as a country are at risk of falling into a slow growth, low growth trap.
बोरिस जॉनसन ने पिछले हफ्ते अपने मंत्रिमंडल के 50 से अधिक सदस्यों और निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा उनकी सरकार से इस्तीफा देने के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की, कई चिंताओं का हवाला देते हुए कि उनकी नैतिक खामियों ने सरकार की विश्वसनीयता को कम कर दिया था। अब खबरें भारत से। भारत में पिछले 24 घंटों में 16,678 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। इस अवधि में कोविड-19 से 42 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मौजूदा रिकवरी रेट 98.5% है। अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 68 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत ₹54.26 हो गई है। अब खबरें खेल जगत से। टेनिस में निक किरियोस ने विंबलडन फाइनल में नोवाक जोकोविच के खिलाफ सामना करते वक्त मानसिक दृढ़ता की कमी होने की टिप्पणियों पर पलटवार किया है। गर्म स्वभाव से जाने जाने वाले इस कैनबेराई ने चेयर अंपायर पर अपना आपा खो देने के बाद एक कोड वॉयलेशन उनको मिला। दावा ऐसा किया गया था कि इतने महत्वपूर्ण 3 घंटे के संघर्ष के दौरान एक महिला दर्शक उनकी सर्विस के बीच बात कर रही थी। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए किरियोस ने कहा कि उन्होंने खुद को अच्छी तरह से संभाला और खुद को जीतने का सबसे अच्छा मौका दिया क्योंकि मैच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था।
You know, at times out there, obviously, you know, I was getting angry a bit because I just looked at it as, you know, you win this tournament and you become a tennis immortal, I feel. It was just an opportunity for me that people work their entire life for.
और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में ज्यादातर धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहेगा। एडिलेड में बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। मेलबर्न में भी बारिश की संभावना है और वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 12 डिग्री तक रहेगा। कैनबेरा में बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान -1 और अधिकतम तापमान 12 डिग्री रहेगा। सिडनी में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। ब्रिस्बेन में 1 या 2 बौछार हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।